صحابہ نے بولا کہ باپ کی یاد میں کرامات بھری ہوئی تھی.
اور کیا کرامات بھری ہوئی تب تو چہرہ کھل جاتا ہے. وشیشتا بھری ہوئی.
مووی میں رہنے کی پریکٹس کرنا ہے. مووی میں رہنے کی پریکٹس کرنا ہے.
پہلے سنیما ہوتا تھا مووی, بولتا نہیں تھا. ابھی بولتا بھی ہے اور چتر بھی دیکھتا ہے. پہلے صرف چتر ہی چتر دیکھتا تھا, جسے کہتے ہیں مووی. مانا بولنا کب ہے, مووی میں رہنا مانا فرسٹ ٹائم اسٹیج میں رہنا.
پیٹ سے پٹکی نہیں باندھنا.
ہاں پیٹ ہے ایک بدھ روپی پیٹ اور ایک یہ استھول پیٹ. استھول پیٹ کو بھی پٹی نہیں باندھنا ہے. بدھ کا پیٹ ہے بدھ روپی پیٹ, اسے بھی پٹی نہیں باندھنا ہے. اس کا بھی کام چالو رہے, من چنتن منتھن چلتا رہے. ब्राह्मणों का काम ही है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, मनन चिंतन मंथन करना.
जो बहुत होशियार होंगे वो पहले पहले आए होंगे.
होशियार है तब तो बाप की बात को बहुत मानेंगे, और जो बाप की श्रीमत को बहुत मान्यता देंगे वो पहले पहले आवेंगे. باپ کو نہیں پہچانیں گے تو باپ کی شریمت کو بھی نہیں مانیں گے. وہ آتمائیں کم جنم لیں گی یا زیادہ جنم لیں گی؟
شریمت کو مانیں گے زیادہ جنم
لیں گے. ماننے والے زیادہ
جنم لیں گے
اور نہ ماننے والے کم جنم لیں گے. تو جتنا کم جنم لیں گے اتنا جاستی دکھی ہوگی, دکھی دنیا میں آئیں گے. جتنے جاستی جنم لیں گے اتنا جاستی سکھی دنیا میں آئیں گے اور زیادہ سکھ ہوں گے. اور
یہ بتایا کہ سنکر کا اس کا اتنا بنڈل فل پارٹ ہے کہ تم بچے بھی سمجھ نہ سکتے. त्रिमूर्ति का एक्यूरेट परिचय किसे
है?
फिर त्रिमूर्ति का एक्यूरेट परिचय कैसे दें?
एक्यूरेट परिचय
कैसे दें?
कैसे दें?
हाँ शंकर का इतना बंडल बच्चे भी समझ ना सकते. समझ नहीं पाएंगे तो एक्यूरेट परिचय कैसे
दें?
तो बच्चों को समझना पड़े. आज नहीं समझते हो कल समझ जाएंगे. जब समझ जाएंगे तो एक्यूरेट परिचय भी देंगे. खुद को ही घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है तो दूसरों को भी अनिश्चय पैदा करेंगे, अनिश्चय पैदा करेंगे. और
इच्छाएं तो इतनी है कि पूरी नहीं कर सकते तो उनको दुख तो मिल ही जाता है.
शिक्षा तो यही मिली है, इच्छा मात्र में विद्या. जो पाना था सो पा लिया. अगर भगवान को पा लिया तो और क्या इच्छा रह गई?
दुख तो मिल जाता है हमारे जरिए. दुख तो मिल जाता है
किसको? आपको कोई इच्छा नहीं है तो आपसे दूसरे को दुख क्यों मिलेगा? आपको खुद ही इच्छा है तभी तो दूसरों को दुख मिलेगा.
बाप को दिल बात है, बच्चे पसंद है
तो ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है. ये भी बताया हुआ है कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है.
دل والا بچے مجھے وشیش پسند ہے ایسے نہیں بولا.
باپ کو دل والے بچے پسند ہے؟
پسند ہے.
بدھی والے نہیں,
وشیش پسند نہیں.
بدھی والے بچے وشیش
نہیں,
بدھی کا خیال
رکھنے والے بالکل پسند نہیں.
یعنی تو آتما,
یعنی تو آتما, یعنی اسے کہا جاتا ہے جو باپ کو پورا پہچان,
پورا پہچان.
اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ بدھیمان ہوگا وہی باپ کو پورا پہچانے گا. بوڑھی بوڑھی ماتائیں ہیں, ڈھیر ساری ماتائیں زیادہ نکل رہی ہیں, بھائی لوگ کم نکل رہے ہیں, تو کیا مطلب ماتائیں نہیں پہچانتی؟
بدھیمان اور گیانی الگ الگ,
بدھی کا اہنکار الگ بات. بدھی کا اہنکار سب سے جاستی آج دنیا میں ویگیانکوں کو ہے. یا جو گیان میں چلنے والے ہیں ان کو ہے. ان کو زیادہ بدھی کا اہنکار ہے, انہوں نے اس دنیا کو نشٹ کرنے کا ہی سامان تیار کر لیا ہے جس میں وہ رہے پڑے ہیں. اسی ڈالی کو کاٹ رہے ہیں جس پر بیٹھے ہوئے ہیں.
پتی پاونی گنگا نہیں ہے تو شیو کے اوپر براجمان کیوں ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ پتی تو پاون ہے تو شیو بابا, پرنتو شیو بابا کی پہچان کون دیتا ہے؟ جو زیادہ سر سے وہ بچے ہوتے ہیں ان کو سر پر بٹھائے لیتے ہیں. بابا نے کس کو اشارہ دیا؟ جو گیان گنگائیں انت میں نکلیں گی ان کی طرف اشارہ کیا. جو ایسی سیوا کریں گی کہ بڑے بڑے سادھو سنیاسی نکل پڑیں گے اور تم بچوں کی وجہ ہو جاوے گی. پتتوں کو پاون بنانے کا راستہ بتانے والا خاص کون ہوا؟ شیو بابا ہوا. جو کام شیو بابا نہیں کر پایا وہ گنگا نے کر دکھایا. بچوں نے سمجھا تو تک سمجھا, پریکٹیکل جیون میں دھارن نہیں کر پایا. گنگا نکلتی ہے تو ایسی آتماؤں کو سمجھانے کے نمت بن جاتی ہے جو پوترتا کے آدھار پر پریکٹیکل جیون میں بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. مانے اصلی برہما کماریاں نکل پڑتی ہیں. گنگا تو رودرمالا میں سے ہے. ابھی بھی بابا کہتے ہیں وجے مالا کا آواہن کرو. کون کریں گے وجے مالا کا آواہن؟ اپوتر کریں گے یا پوتر گنگا ماتائیں کریں گی؟ دل کا آواہن کون کریں گے؟ دل سے دل کو راحت ہوتی ہے. اور
گرمانا کے بچے آواہن کریں گے اس کا آتے
ہیں کر آواہن کر پا رہے ہیں, کر رہے ہیں کہ بدھی اپنی اپنی لاگت میں لگی ہوئی ہے.
بابا گیتا کا بھگوان کرشن نہیں ہے تو شیو کیسے ہیں؟
ہیں
گیتا کا بھگوان کرشن نہیں ہے تو شیو کیسے ہیں؟
گیتا गीता का भगवान कृष्ण है न गीता का भगवान ब्रह्मा है, साकार में तो दोनों ही नहीं है। जब शिव शंकर में प्रवेश करता है तब गीता का भगवान है। ब्रह्मा गीता माता है, गीतापति भगवान नहीं है। उस ब्रह्मा के मुख से निकली हुई एक एक वाणी को, एक एक महावाक्य को, एक एक शब्द को जानने वाला गीतापति भगवान है। जो एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके बताता है। पति होता है तो पत्नी की नस नस को पहचानता है। उसको कहा जाता है गीतापति भगवान। तो शिव शंकर भोलेनाथ है गीता का भगवान। यह का ब्रह्मा और कृष्ण है गीता का भगवान। साकार में कौन है? शिव की तो बात ही नहीं। शिव तो निराकार है। निराकार है तो सुनावेगा कैसे? क्लैरिफिकेशन कैसे देगा? गीता की व्याख्या कैसे करेगा? ये कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। शिव जब शंकर में प्रवेश करता है तब गीता का भगवान है। और
आत्मा सो परमात्मा
जी,
आत्मा सो परमात्मा नहीं है।
तुम्हारी कथा तो बहुत लंबी है, कथा को छोटा करो फिर। हाँ क्या बोला
बाबा? आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है?
एक ही आत्मा तो है जो बाप समान बनकर के बाप का टाइटल के साथ अपना टाइटल जोड़ देती है। शिवशंकर भोलेनाथ, बाकी सब परमात्मा का टाइटल ले लेते हैं क्या? सबका नाम परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाता है क्या? एक ही आत्मा है जो आत्मा सो परमात्मा का पार्ट बजाती है। परम माने बड़ा, दूसरी आत्माओं के मुकाबले बड़ा पार्ट है। कहते भी है देव देव महादेव, अन्य देवताओं के मुकाबले महान पार्ट है। तो एक का गायन सबके ऊपर थोप दिया है। आत्मा सो परमात्मा,
परमात्मा सिर्फ व्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है?
ब्रह्मा कुमारियों से पूछ लो। तो जानते ही हो, जरूर जो जानने वाला है वो ही पूछेगा। तो इतना कहना कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, नहीं है, नहीं है, अरे नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो तो बताओ।
शंकर और विष्णु अलग नहीं है तो ब्रह्म कुमारियों का सवाल लेगा
है?
ब्रह्मकुमारियों से सवाल है, मतलब ये उसका
क्या
शंकर और विष्णु अगर नहीं है तो
अलग नहीं है।
हाँ
तो वो कहाँ एक कैसे, शंकर और विष्णु को एक कहाँ कहा जाता है?
एक नहीं बाबा, शंकर और विष्णु अगर नहीं है तो
नहीं है
तो अनेक इतने मंदिर और मूर्तियाँ कहाँ से आ गई?
अरे है ना, शंकर भी है और विष्णु भी है प्रैक्टिकल में, लेकिन ब्रह्मा अभी प्रैक्टिकल में नहीं है। जब संसार में प्रत्यक्षता होती है तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा का पार्ट नहीं रहता, ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी हो जाता है, और प्रैक्टिकल में शंकर और विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्माएं इस शक्ति पर फिर भी मौजूद रहती है, इसलिए उनके मंदिर बनाए जाते हैं। ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाया जाता, मूर्तियां भी नहीं बनती, क्योंकि सिद्धि पाने से पहले ही लोप हो गया।
शादी में पुराने कपड़े पहनते
हैं?
शादी में पुराने कपड़े पहनते
हैं? कहाँ
शादी में?
शादी
तो इसका क्या?
अब तुम्हारी 21 जन्म की शादी होने वाली है कि नहीं? 21 जन्म के लिए तुम्हें एक साथी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अभी तुम वनवास में हो या राजाई ठाटवास में हो? वनवास में हो। और
महाभारत के युद्ध को दृष्टि के आधार पर पूरा देखा
है?
महाभारत के युद्ध को वो आत्माओं ने दृष्टि के आधार पर पूरा देखा
है?
एक तो संजय जो धृतराष्ट्र के पास बैठते
हैं,
और एक बर्बरी करके जो भीम के पुत्र घटोत्कचर उसके पुत्र बर्बरी, उन्होंने देखा
है। तो वो असुर था।
हाँ वो असुर था बाबा। तो वो पूरा युद्ध जब समाप्त हुआ,
बोलो,
पूरा युद्ध समाप्त हुआ तो पांचों पांडव
है,
पांचों पांडव और द्रौपदी, श्री कृष्ण और बर्बरी, ये सब मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा सहार और सबसे ज्यादा विजय दिलाने का श्रेय किसको है? तो सबने अपने अपने तरीके से कहा कि मेरे को ये अर्जुन को ना हमको है, पर बर्बरी ने उसका उत्तर ये दिया कि किसी ने भी इस युद्ध में अपने द्वारा विजय प्राप्त नहीं करी, वो युद्ध के अंदर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ही पूरा युद्ध जीता गया। तो बाप दादा बोलते हैं कि बाप दादा को बच्चों में प्रवेश कर पूरा कार्य कराते हैं, मतलब बच्चे खुद भी नहीं कर पाते, बाप दादा प्रवेश कर कराते हैं। संजय को ये दिव्य दृष्टि क्यों नहीं मिली बाबा? वो देख के नहीं पाए इस पूरे सीन को, जबकि बर्बरी पूरे सीन को देख पाए कि अर्जुन का
मंथन करेगा उसके ऊपर ही सारा श्रेय जाता है। मंथन करने के आधार पर एक एक का पार्ट क्लियर हो जाता है, अगर मंथन ही नहीं करेगा तो पार्ट भी क्लियर नहीं होगा। जब पार्ट क्लियर हो जाएगा तो पता चल जाएगा ये हमसे ऊंचा है, हम तो नीचे हैं, तो हार गया या जीत गया? हार गया तो सदर्शन चक्र यही करता है, जो सर ऊंचा उठा हुआ है उसको काट दिया, नीचे गिर गया, माने अहंकार तोड़ दिया। तुम्हारा वो नंबर ऊंचा नहीं है, तुम नीचे नंबर वाले हो।
नहीं बाबा, हमारे प्रश्न था कि संजय को ये दिव्य दृष्टि क्यों नहीं मिली, बर्बरी को ये दिव्य दृष्टि मिली थी?
संजय कार्य किसका कर रहा था?
धृतराष्ट्र
फिर
गीता को सर्वशास्त्र श्रोमणी कहा जाता है, तो वेदों शास्त्रों से पहले गीता की रचना होना चाहिए थी।
हैं?
वेदों शास्त्रों से पहले गीता की रचना होनी चाहिए थी। गीता को माई बाप कहा जाता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है।
वेद कोई शास्त्र नहीं है, वेद माने विद, विद माने जानना, वेद माने जानकारी। शास्त्र उसे कहा जाता है जो शासन करते हैं, शासन करने का विधान है शास्त्र। तो गीता शासन करने का विधान है, जानकारी का भंडार नहीं है। और जहाँ पार्वती का ससुराल है वहाँ भूकंप आता है। कहाँ है पार्वती का ससुराल? है तो पार्वती का ससुराल कहाँ है? भक्तिमार के हिसाब से कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। तो जहाँ पार्वती का ससुराल है वहाँ भूकंप आता है, और भारत में पार्वती का पीहर है। या कैलाश पर्वत हिमालय में नहीं है? तो हिमालय राज हिमालय के वासी नहीं थे? वो भारत में नहीं है? तो लिखने वाला क्या लिख रहा है?
पहली आत्मा जावेगी और आखिरी आत्मा आवेगी परमात्मा। आखिरी आत्मा को भी शरीर से जन्म लेना पड़ेगा। तो शरीर से जन्म लेने को तो टाइम लगता है।
टाइम क्यों लगता है?
घर में जब प्रवेश होगी तो उसको तो चार महीने लगते ना। घर में जब प्रवेश होगी तो चार महीने तो उसको लगते हैं ना जन्म लेने।
आने और जाने की वहाँ कोई बात है आत्मा की? आत्मा को आने और जाने में एक सेकंड भी नहीं लगता। जहाँ आत्मा के जाने आने की बात है वहाँ टाइम की गति नहीं है। आने जाने में शरीर को टाइम लगता है, पांच तत्वों को टाइम लगता है। आत्मा तो सर्वज्ञ हो सकती है। सरस्वती ब्रह्मा कुमारी थी या नहीं थी? बेटी हो गई।
सतयुग में तो 16 कलाएं होंगी।
हाँ जी।
तो संगमयुग में तो सारे कलातीत हो जाएंगे क्या सभी?
हैं?
तो 4.5 लाख सब कलातीत रहेंगे क्या?
4.5 लाख जो है कि चढ़ती कला रहेगी या उतरती कला रहेगी?
16 कला से ऊपर रहेंगे।
हाँ जी, ये कलातीत है, सूर्यवंशी है, जैसे सूर्य की कलाएं नहीं होती वैसे बहुत से सितारे ऐसे हैं जो स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं टिमटिमाते रहते हैं, दूसरे से रोशनी नहीं लेते। हाँ जी, पूरे नहीं है, नंबर वार है। हाँ जी, क्या मेहंद्रीपुरा बालाजी
मेहंदीपुर
मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी की छाती से पानी निकलता है, इसका राज क्या है? हनुमान जी ने अपनी छाती में भगवान को बैठा रखा होगा, भगवान ज्ञान सुनाते हैं छाती में से।
अन्य वंशियों के त्रासी जन्म से कम होंगे क्या? ठीक है, सूर्यवंशियों के 84 जन्म होंगे, क्योंकि यहाँ संगम युग में एक जन्म चंद्रवंशियों का कम हो जाएगा, परंतु वो भी 16 कला संपूर्ण बनते हैं, इसलिए त्रेता में जाके उनका एक जन्म बढ़ जाएगा। त्रेता में 13 जन्म होंगे, और जो न सूर्यवंशी होते हैं न चंद्रवंशी होते हैं, और धर्मों के बीज हैं, और उनसे जो आधारभूत जन्म लेते हैं तिरासी जन्म से भी कम होगी। बोला है कि भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो बाबा वो आत्माएं शरीर छोड़कर तुरंत ही जन्म ले लेती हैं, या फिर सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकती रहती है। जो एडवांस में आने के बाद भी भक्ति मार्ग के संस्कार धारण करके रहते हैं, उनको शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, परंतु शरीर छोड़ने के बाद उनको दूसरा जन्म भी मिलेगा, जिसमें वो अपनी आस पूरी करेंगे। इसी शरीर से संपन्न होने का, परंतु अगर अकाले मौत हुई है तो थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर भी धारण करना पड़ेगा। आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका 12वां 13वां क्यों करते हैं? और मुंडन संस्कार क्यों करते हैं? छोड़ने का मतलब क्या है? देह बांध छोड़ना। और जो देह बांध छोड़ते हैं उनके पूर्वजन के सारे संस्कार मुड़ लिए जाते हैं या रह जाते हैं, मुड़ लिए जाते हैं, और हर आत्मा बारह राशियों से गुजरती है अपने अपने जन्मों में। ये 12 राशियां और कोई नहीं है, हर धर्म में 12 प्रकार की आत्माएं हैं, माने 12 पूर्वज हुए हैं, पूर्वजों के ऋण से पूर्ण होना पड़ता है, इसलिए भक्ति मार्ग में ये बात बनी हुई है कि 12 दिन में त्रास करने के बाद फिर 13वीं होती है। अगर सवाल अकेले में पूछेंगे तो बाबा का ध्यान नहीं जाएगा, ये क्या बात हुई? अकेले में पूछेंगे तो बाबा का ध्यान नहीं जाएगा, ऐसा क्या कारण है? अकेले में पूछेंगे तो भी बाबा का ध्यान जाएगा, सभा में पूछेंगे तो भी ध्यान जाएगा। हाँ, कोई काम कर रहे हैं, किसी दूसरे से बात कर रहे हैं,
कोई स्पेशल मनन चिंतन मंथन चल रहा है तब पूछा गया तो ध्यान नहीं जाएगा। अकेले में भी सवाल पूछ सकते हैं। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, क्यों उत्तम माने ऊंचा, जैन माने जो जिन माने इंद्रियों को जीतने वाले को फॉलो करते हैं वो है उज्जैन वाले अर्थात सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों का जो मुखिया है जिसकी उज्जैन वाले बहुत मान्यता देते हैं वो कौन है? महाकाल अर्थात शंकर। उज्जैन इंदौर के सबसे ज्यादा करीब है, क्यों? उज्जैन माने पक्के पक्के सूर्यवंशी, काशी वासी। और कहां से निकलते हैं काशी वासी? निकलते कहां से हैं? इंदौर, जो डोर के अंदर रहे पड़े हैं, बाहर नहीं, ब्रह्मा कुमारियों की तरह निकलने दिया जाता है। वहां से उनका चयन होता है, किनका? उज्जैन वासियों का। इंदौर के सबसे नजदीक कौन हुए? उज्जैन वासी। वो इंदौर वासी और वो उज्जैन वासी।
हटके तो वहाँ पे एडवांस में कोई निकला
है? उज्जैन पार्टी से कोई नहीं है। बेहद की बातें हो रही हैं कि हद की बातें हो रही हैं? पहले दुनिया के सामने इंदौर वाले प्रत्यक्ष हैं या काशी नगरी वाले प्रत्यक्ष हैं? दुनियावी लोग काशी वासियों को जानते हैं या इंदौर वालों को जानते हैं? काशी वासी को तुम जानते हो? एड्रेस मिल गया क्या? मिल गया तो फिर तुम जैन वाले पहले ज्ञान पे निकले या इंदौर वाले पहले दिखाई पड़े? पहले कौन देखने में आवेंगे? इंदौर देखने में आ रहे हैं। मानव सभ्यता की भविष्यवाणी के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को अंतिम दिन बताया गया है। इस दिन संपूर्ण विनाश घोषित किया गया है। इसकी कैसेट्स बना करके आबू द्वारा वितरित की गई है। इस बारे में आपकी क्या राय है? तो तुंडे तुंडे मतलब भिन्ना चलता ही रहता है। हमारी राय तो वही राय होगी जो मुरली की राय होगी। मुरली में कोई ऐसा वाक्य आया है कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी? तो बात का नकल हो जाती है। हाँ, आबू वालों ने इसको ज्यादा स्वीकार किया है। और वो माउंट आबू में रहने वाले कौन से वंश के हैं? चंद्रवंशी है। जो चंद्रवंशी है उन चंद्रवंशियों का मुखिया कौन है? है ब्रह्मा, कहाँ है वो ब्रह्मा है? अरे ब्रह्मा कहीं है या नहीं है? अरे सूक्ष्म होना ना होना बराबर हो गया तो पकड़ में आएगा तुम्हारे फिर? चंद्रवासियों का कोई प्रैक्टिकल में मुखिया होगा या नहीं होगा? कौन है? सब चंद्रवासियों का आधार मूर्त और आधार आधार मूर्तों का बीज रूप कोई है कि नहीं है? कौन है? हाँ जगदम्बा है, वो आबूवासी हो गई। हो सकता है कि 2012 में जो धरणी है जगदम्बा रूपी धरणी, उसकी बुद्धि लॉकआउट हो जाए, तो एक आत्मा के परिवर्तन की बात है या 700 करोड़ की सृष्टि के परिवर्तन की बात है? एक आत्मा की बात हो सकती है या उस आत्मा से संबंधित ग्रुप की बात हो सकती है? कुंडलनी जागृत क्या होता है? वो भक्ति मार्ग की किताबों में दिखाया है कि शरीर में 8 चक्र होते हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडलनी सोई पड़ी है, उन 8 चक्रों में से क्रॉस होते हुए वो सहस्त्रासार आखिरी चक्र में पहुंचती है तो मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, उद्धार हो जाता है आत्मा का। ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं है किसी का, न किसी मनुष्य गुरु ने कुंडलनी जागृत की है। रीढ़ की हड्डी के नीचे मनुष्य की जो ऊर्जा है वो सोई पड़ी है, वो क्षरित होती रहती है, अर्थात शक्ति क्षीण होती रहती है रज और वीरी के रूप में। वो ऊर्जा मस्तक में पहुंचने की आदि बन जाए, यही कुंडलनी शक्ति जागृत होना है। और ये शारीरिक क्रियाओं से पूरी नहीं की जा सकती, ये मन की एकाग्रता से संबंधित है। मन को एकाग्र करना ये भगवान का काम है, एकाग्र कराना ये पढ़ाई भगवान पढ़ाता है, मन को ही आत्मा कहा जाता है। बाकी तो दुनिया में कोई कुंडलनी शक्ति जागृत करा ही नहीं सकता, ना आज तक किसी ने कराया है, कोई प्रूफ भी नहीं है। ड्रामा फिक्स है, किसी का काले मौत होता है वो भी ड्रामा में फिक्स है। जब ड्रामा में फिक्स है तो अकाले मृत्यु कैसे हुआ? ड्रामा में तो फिक्स है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि किसका अकाले मौत कब हो जाएगा? मालूम है? है? अरे किसका अकाल मौत कब होने वाला है ये पता है किसी को? पता तो किसी को भी नहीं है। तो फिक्स है या नहीं है? है? नहीं है, ड्रामा में फिक्स नहीं है। ड्रामा में तो फिक्स है, लेकिन ड्रामा के आदिमत्य अंत का हमको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें अपनी आत्मा का ही 84 जन्मों का पूरा ज्ञान नहीं हुआ। तो जब तक अपनी आत्मा के 84 जन्मों का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो सारे ड्रामा के आत्मत्य अंत को हम कैसे जान जाए, जिसमें एक एक आत्मा का पार्ट भरा हुआ है। पता नहीं पड़ता है तिथि तारीख, शिव जयंती का गायन फिर भी चलता है, तो ये कैसे चलता है? शिव जयंती का गायन चलता है भक्ति मार्ग में या महाशिवरात्रि का गायन चलता है? हैं? शिव जयंती तो ब्रह्मा कुमारियों ने कहना शुरू कर दिया, भक्ति मार्ग में तो 2500 साल से महाशिवरात्रि का गायन है, और बड़े से बड़े यज्ञ अंधकार की रात्रि कब होती है? कौन से युग में होती है? दुनिया के मनुष्यों के बीच संगम में, और संगम तो 100 साल का है, 100 साल में भी बड़े से बड़े अज्ञान की रात्रि कब होती है? हैं? कब? हाँ, जब दुनिया वालों को तो अज्ञान है ही, लेकिन जो बेसिक वाले हैं वो भी अज्ञानी बन जाए, और बेसिक में से निकले हुए एडवांस वाले भी अज्ञानी बन जाए, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है उनकी तो बात छोड़ दो, परंतु जिन्होंने बेसिकली पहचाना है वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाती है। नंबर बार अभी भी अज्ञान अंधकार में, और जो अपने को ज्ञानी समझते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया है हमको कोई डिगा ही नहीं सकता, उनके लिए भी एक ऐसा टाइम आ जाए जो बाप को भूल जाए और बाप के डायरेक्शन को छोड़ दें, अपनी मन मत पर या मनुष्यों की मत पर चल पड़े। ऐसा ज्ञान का अंधकार जब सारी दुनिया में फैल जाता है तब बाप आते हैं। तो वो टाइम अभी आया है या नहीं आया है? है? जब सारी दुनिया 500-700 करोड़ की बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, 33 करोड़ की और एडवांस की दुनिया 9 लाख की, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाए, तब बाप की प्रत्यक्षता हो जाए अचानक। उस समय का गायन है महाशिवरात्रि। ये टाइम कब आवेगा? अरे 40-50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, है? हाँ जी, 2018 तक तमो प्रधान ही बनते रहेंगे, दुनिया के सारे मनुष्य चाहे कोई भी कैटेगरी के क्यों ना हो, उससे पहले सतो प्रधान बन जाएंगे।
है, 40 वर्ष जब तक पूरे नहीं हुए हैं तब तक कोई भी सतो प्रधान नहीं बन सकता। तो वही टाइम होगा महाशिवरात्रि का, उसी का गायन है संसार में महाशिवरात्रि, केवल जयंती का गायन नहीं है।
अज्ञान अंधकार में डूबने का मुख्य
है,
अज्ञान अंधकार में डूबने का मुख्य कारण क्या है?
अज्ञान अंधकार में
डूबने का मुख्य कारण क्या है?
गफलत। कहते तो हैं भगवान को पहचान लिया, फिर भगवान तो कहते हैं अमृत वेला सुधर गया तो सब सुधर जाएगा, फिर अमृत वेला किसी का सुधर गया है? कारण नहीं पता चला। लौकिक परिवार में सारे के परिवार के सदस्य हॉस्पिटलाइज हो जाए, प्राण निकलने लगे, सिलेंडर पर चढ़ा दिए जाए, तो जो एक बचेगा उसको नींद आवेगी? अरे नींद आवेगी कि नहीं आवेगी? फिर हाथिम ताई की कहानी में आता है, मुलहरा मुंह में रखने से माया भाग जाती है, इसका क्या अर्थ हुआ? बाबा की याद करने से माया भाग जाती है, याद बुद्धि में है तो माया भाग जाएगी, और बाप की याद नहीं है तो माया आ जाएगी। चूर्मी का पौधा भी दिखाते हैं, हाथ लगाने से मुरझा जाता है, माया भी क्या करती है? माया भी संग का रंग लगाती है और माया आ जाती है, मुरझा जाती है। जापान में वो लोग अपन को सूर्यवंशी कहते हैं, वहां पर सुनामी या भूकंप सबसे जास्ती आते हैं, जो सबसे उच्च पद पाने वाले होंगे अच्छे पुरुषार्थी होंगे या घटिया पुरुषार्थी होंगे? अच्छे पुरुषार्थी होंगे, जो अच्छे अच्छे महारथी होंगे उनको माया ज्यादा पकड़ेगी या कम पकड़ेगी? तो ज्यादा सुनामी किसके ऊपर आना चाहिए? है सूरज के ऊपर आना चाहिए।
जापान का मतलब क्या होगा?
उनका पानी चला जाए, वो बहुत ऊंचे थे, कहते हैं ना बड़ा पानीदार आदमी है।
वाली बोला कोचिंग करो, वाली का बोला है कोचिंग करो,
कोचिंग कोचिंग
कोचिंग
कोचिंग
कोचिंग कोचिंग क्लास नहीं जाते, कोचिंग क्लास माने जो ट्यूशन लेने के संगठित क्लास लिए जाते वो कोचिंग करो। सत्यम शिवम सुंदरम इसका बेहद में अर्थ क्या है? ये दुनिया झूठ की है या सच की है? हैं? झूठ की दुनिया में सब झूठे हैं या कोई परसेंटेज में सच्चे भी हैं? हैं? परसेंटेज में तो सच्चे हैं, लेकिन 100% सच्चा कोई भी नहीं है। तो जो कोई भी सच्चा परसेंटेज में नहीं है, वो सच्चा 100% कोई भी नहीं है, अगर उसमें एक सच्चा निकल आवे, संसार में साबित हो जावे कि एक सच्चा और बाकी सब सब झूठे, वही सत्यम है। इसको कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, और जो सच्चा है वही कल्याणकारी है। अगर कल्याणकारी नहीं है सारे विश्व का,
तो वो सच्चा नहीं है, झूठा है। एक का भी यह कल्याण करने वाला है क्या कहा जाएगा, सच्चा है या झूठा है? झूठा कहा जाएगा। और जो कल्याणकारी है, सच्चा है, वो ही सुंदर है। चेहरे भरे से सुंदर है, सुंदर नहीं है, लेकिन जो सबका कल्याणकारी है, सदा ही सत्य है, वो ही सदाशिव है, अति सुंदर है। बाबा 1:30 बज गया, चलो ओम शांति।